ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस भाद्र 10 गते से प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव लक्षित 15 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान करेगी संचालित। आगामी मार्गशीर्ष 4 गते होने वाले चुनाव के लिए 40 राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग में करवाया दल पंजीकरण। नेपाल में आज कोरोना के 263 नए मामले आए सामने, संक्रमित 2 लोगों की हुई मौत और भारत के बिहार में जहरीली शराब से 8 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस आसन्न संघीय और प्रदेश सभा चुनाव को लक्षित कर भाद्र 10 गते से राष्ट्रीय अभियान संचालन करेगी। आज पार्टी मुख्यालय सानेपा में कार्य संपादन समिति की बैठक ने भाद्र 2 गते के लिए पूर्व घोषित चुनाव लक्षित अभियान को आगे बढ़ाकर भाद्र 10 गते से 24 गते तक संचालित करने का निर्णय किया। ये बात कांग्रेस के सह महामंत्री भीष्मराज आंग देम्बे ने बताई। बैठक ने चुनाव में पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को उम्मीदवारी पत्र देने की जिम्मेदारी पार्टी सभापति शेर बहादुर देवा को सौंपी है। इसके अलावा प्रक्रिया पूरी कर उम्मीदवारों के नामों का प्रस्ताव और सिफारिश करने के लिए पार्टी के संबंधित निकायों को उपयुक्त समय में केंद्रीय कार्यालय के जरिए निर्देश करने का निर्णय भी बैठक ने किया। आगामी मार्गशीर्ष 4 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के चुनाव के लिए आज शाम तक 40 राजनीतिक दलों ने दल पंजीकरण करवाया। आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक नेकपा एमाले, लोकतांत्रिक समाजवादी, नेकपा एकीकृत, नेकपा समाजवादी लगायत दलों ने चुनाव में हिस्सा लेने के लिए दल पंजीकृत करवाए। बता दें कि प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के आगामी चुनाव के लिए दल पंजीकरण के लिए आयोग ने सावन 22 गते से 31 गते तक का समय दिया है। साथ ही सार्वजनिक छुट्टियों में भी आयोग खुला रहेगा और चुनाव से संबंधित काम होंगे। ये बात आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल ने बताई। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि इस बार के चुनाव में माओवादी केंद्र बेहतर जनसमर्थन प्राप्त करेगी। आज पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस टांडा में बुलाई गई पोस्ट बहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठान की साधारण सभा में अध्यक्ष प्रचंड ने ये बात कही। अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि विचार और व्यवहार में एक रूपता न हो पाने के कारण पार्टी के अंदर गुटबंदी समाप्त नहीं हो सकी, इसलिए पिछले चुनाव में नतीजा कमजोर रहा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राइन ने कहा कि तरह तरह के बहाने बनाकर परियोजना को समय पर पूरा न करने वाले निर्माण व्यवसायियों पर कार्रवाई होगी। परसा की वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 17 और 19 को जोड़ने वाले तिलावे नदी पर निर्मित पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री राइन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मंत्रालय अंतर्गत की सड़क, पेयजल, सिंचाई और अन्य पूर्वाधारों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं को समय पर ही पूरा करने के लिए मंत्रालय ने काम आगे बढ़ाया है। बता दें कि 103 मीटर की लंबाई वाले इस पुल का निर्माण 7,71,00,000 रूपये की लागत में हुआ है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन के बीच राष्ट्रीय राजनीति और अन्य समसामयिक विषयों में बातचीत हुई। ओली निवास बालकोट में हुई बातचीत में उनके बीच चुनावी तालमेल और सहकार्य के बारे में विचार विमर्श हुआ था। सरकार ने मीटर ब्याजियों के विरुद्ध अधिक जानकारी और प्रमाण जुटने के हिसाब से पीड़ितों को स्थानीय प्रशासन कार्यालय में शिकायत करने का आह्वान किया है। मीटर ब्याजी अपराध पर नियंत्रण के उद्देश्य से गठित कार्यदल ने आज एक सूचना जारी कर आगामी भाद्र 5 गते तक में शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया है। गृह मंत्रालय में कार्यदल गठित होने के बाद नवलपरासी पश्चिम की प्रतापपुर और सुस्ता गांव पालिका के मीटर ब्याज पीड़ित किसान मजदूर संघर्ष समिति से काठमांडू के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व वाली टोली ने वार्ता भी की है। देशभर में आज कोरोना के 263 नए मामले सामने आए हैं और 501 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं 2 संक्रमितों की मौत हो गई। बहरहाल देशभर में कुल 5,434 सक्रिय संक्रमित हैं। आज 1,27,321 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G वीडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकमको 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार.
अब बाँकी समाचार. पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवन की इच्छा कामना गांवपालिका वार्ड नंबर 5 में आज सुबह एक ट्रक त्रिशूली में गिर गया. मुगलिन से धादिंग की तरफ आता हुआ ट्रक त्रिशूली नदी में गिर गया, ये जानकारी पुलिस ने दी. हालांकि पुलिस ने यह भी बताया कि ट्रक का मालिक, चालक और सहचालक संपर्क में आ चुके हैं. जिला प्रहरी कार्यालय चितवन से मिली जानकारी के मुताबिक त्रिशूली में गिरा हुआ ट्रक अब तक नहीं मिल पाया है. बारा में आज करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. खेत में पानी डालने के लिए मोटर का तार जोड़ने के दौरान शॉर्ट होकर करंट लगने से महागढ़ीमाई नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के 35 वर्षीय सुरेंद्र प्रसाद यादव की मौत हो गई. ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय बारा के हवाले से हमारे संवाददाता ने दी. रुकुम पूर्व पुथा उत्तर गंगा गांवपालिका वार्ड नंबर 11 में आज पुलिस की वैन की दुर्घटना हो गई. इस हादसे में पुलिस के एक जवान की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए. रुकमकोट से पुथा उत्तर गंगा की ओर जा रही वैन तल्लो सिराग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. दुर्घटना में जिला प्रहरी कार्यालय में कार्यरत प्रहरी जवान रोलपा के लक्ष्मण पुन की मौत हो गई. घायलों को इलाज के लिए नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से बांके के विभिन्न अस्पतालों में भेजा गया है. इसी तरह पश्चिम नवलपरासी के भैरहवा भूमही सड़क खंड पर ट्रक ने बस को टक्कर दे दी. इस हादसे में 19 लोग घायल हो गए हैं. घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई गई है. घायलों का इलाज चल रहा है. अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार. भारतीय राज्य बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 20 लोगों का इलाज चल रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि जिले में मरने वाले 8 लोगों की मौत शराब पीने से हुई है. शराब पीने के बाद इनकी अचानक तबीयत बिगड़ने लगी. जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सभी की मौत हो गई, जबकि अन्य 20 लोगों का इलाज चल रहा है. मौत के बाद पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की. इसमें मृतक के घर से 45 फीट की दूरी पर भारी मात्रा में शराब मिली. अब मौसम. अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रहा. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. नेपाली कांग्रेस भाद्र 10 गते से प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव लक्षित 15 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान करेगी संचालित. आगामी मार्गशीर्ष 4 गते होने वाले चुनाव के लिए 40 राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग में करवाया दल पंजीकरण. नेपाल में आज कोरोना के 263 नए मामले आए सामने. संक्रमित 2 लोगों की हुई मौत और भारत के बिहार में जहरीली शराब से 8 लोगों की हुई मौत. रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए. रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार. शुभरात्रि.